नमस्कार भारत, 7 अप्रैल दिन गुरुवार, मैं हूं संदीप सोनी। पाकिस्तान ने कहा, पठानकोट हमले के गवाह सेना के जवानों से पूछताछ का मौका नहीं मिला। श्रीनगर के एनआईटी घटनाक्रम पर सियासत जारी, जम्मू में आज बंद का आह्वान। भारत की राजधानी दिल्ली में भी खुद को महफूज महसूस नहीं करते कश्मीर के छात्र।
हम कश्मीरियों को दूसरी नज़र से देखा जाता है, हम कश्मीरियों को क्या मैं बोलूं, हम कश्मीरियों को आतंकवादी की नज़र से देखा जाता है यहाँ पे।
क्या है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पीछे आरएसएस की राजनीति?
वो एक ऐसी कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें उनका वर्ल्ड व्यू, जैसे वो हिंदू वर्ल्ड व्यू कहते हैं, जो कि है नहीं। हिंदू मजहब, हिंदू परंपरा, पॉलिटिकल हिंदुत्व में उतना ही फर्क है जितना कि जमीन और आसमान में हो सकता है।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। पाकिस्तान के विदेश मामलों के मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को भारत के सुरक्षा बलों के सदस्यों से नहीं मिलने दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पठानकोट मामले की जांच आगे जारी रहेगी। श्रीनगर में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एनआईटी में गैर कश्मीरी छात्रों ने इंस्टीट्यूट को भारत शासित कश्मीर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की है। इन छात्रों ने कल लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं नेशनल पैंथर्स पार्टी और श्रीराम सेना ने आज जम्मू क्षेत्र में बंद का ऐलान किया है। T20 विश्व कप में भारत वेस्टइंडीज मैच के बाद से वहां तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। कल तिरंगा झंडा लहराने की कोशिश कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। वहीं राज्य सरकार ने कहा है कि हर छात्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। आइसलैंड के सत्तारूढ़ गठबंधन ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर सिगर्डर इंगी जोहानसन को चुन लिया है। इससे पहले पनामा पेपर लीक्स में नाम आने के बाद सिगमंडर गुनलॉगसॉन ने कल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रोग्रेसिव पार्टी के सिगर्डर इंगी जोहानसन ने कहा कि सरकार जल्द चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि चुनाव से पहले सरकार को कई काम करने हैं। सिगर्डर इंगी जोहानसन ने ये कहा,
We will continue to lead a good government and keep up the good work we have worked on.
हम अच्छी सरकार का नेतृत्व करेंगे और पिछले 3 साल में किए गए सारे काम जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री के बदलने से कुछ बदलाव तो आएगा ही, लेकिन गठबंधन में दोनों पार्टियों से समझौता वैसा ही रहेगा। उम्मीद है कि आइसलैंड में स्थिरता बनी रहेगी। ये थे सिगर्डर इंगी जोहानसन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफ्रीकी देश सूडान के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर ने 31 साल बाद राष्ट्रपति पद खाली करने की घोषणा की है। उनका कार्यकाल 2020 में खत्म हो रहा है। सूडान में अल बशीर की घोषणा को लेकर आशंकाएं भी हैं कि वो पहले भी पद खाली करने की बात कह चुके हैं, लेकिन फिर अपने वादे से मुकर गए हैं। ओमर अल बशीर को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने मानव संहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में दोषी घोषित किया था। अल बशीर इस आरोप से इनकार करते रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंटरनेट पर धार्मिक कट्टरता की निंदा करने वाले एक छात्र की हत्या कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि कानून की पढ़ाई कर रहे नजीमुद्दीन समद पर ढाका में एक चौराहे पर हमला किया गया। नजीमुद्दीन कथित तौर पर धर्मनिरपेक्ष प्रचार समूह का संचालन करते थे और अपने फेसबुक प्रोफाइल पर उन्होंने लिखा था कि मेरा कोई धर्म नहीं है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान का जो संयुक्त जांच दल भारत गया था, उसे पठानकोट हमले के प्रत्यक्षदर्शी भारतीय जवानों से पूछताछ का मौका नहीं दिया गया। पाकिस्तान के इस बयान को कोशिश करेंगे समझने की, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत उस खबर से जो बीते कई दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रही है। भारत प्रशासित कश्मीर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT में छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद विवाद और बढ़ता नजर आ रहा है। कल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 2 अधिकारियों ने छात्रों से बात की, लेकिन मामला ठंडा पड़ने के बजाय और गर्मा गया। सोशल मीडिया पर NIT चलो की बात हो रही है, वहीं जम्मू में भी आज बंद का आह्वान किया गया है। سنیے श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
NIT में गैर कश्मीरी विद्यार्थियों पर कश्मीर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में राज्य की नेशनल पैंथर्स पार्टी और श्रीराम सेना की कॉल पर आज जम्मू क्षेत्र में बंद का आह्वान किया जा रहा है। कल जम्मू के सारे न्यायालयों में वकीलों ने इस मामले पर सरकार के विरोध में हड़ताल की। भारतीय संसाधन मंत्रालय के दो अधिकारियों ने कल कैंपस में छात्रों के साथ बात की, लेकिन छात्रों की मांग है कि वहां से कश्मीर पुलिस को बाहर कर दिया जाए और कश्मीरी छात्रों का पक्ष करने वाले अध्यापकों का तबादला किया जाए।
देखिए, मैं आपको पहले भी मैंने कहा था, आज मैं सीट के इस तरह बैठा हूँ, मैं कल वहाँ बैठा हुआ करता था। मैं आपकी तरह इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में मैंने पढ़ाई।
J&K पुलिस आउट ऑफ द कैंपस।
इस बीच सरकार ने कैंपस में अर्धसैनिक बल CRPF की दो कंपनियों को तैनात किया है। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने वो बयान भी वापस लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि छात्रों पर हल्का लाठीचार्ज किया गया। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार को NIT के छात्रों को सुरक्षा प्रदान न करने पर आलोचना का निशाना बनाया है। NIT में 1500 से अधिक गैर कश्मीरी छात्र हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों से हैं। यहां कश्मीरियों की संख्या 400 से भी कम है। सोशल मीडिया पर शनिवार को NIT चलो की कॉल दी गई है, लेकिन यहां के राजनीतिक वर्गों का कहना है कि इस मामले पर राजनीति खेली जा रही है। विधायक इंजीनियर रशीद कहते हैं,
दो नफरी एक टीम भी यहां पर भेजी गई, हमें ये कतन कबूल नहीं, ये यहां के इंतजामी उमूरात में मदाखलत है। और उससे बड़ी बात यह है कि जब कुछ हुआ ही नहीं, एक तो वही वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और दूसरी बात वही फिर चिल्ला भी रहे हैं, आखिर वो चाहते क्या हैं। दरअसल वो लोग यहां से माइग्रेशन करके किसी और जगह पढ़ना चाहते हैं और उनको बहाना चाहिए, और खुद उसी चीज़ को लेके पूरी मरकजी सरकार की, यहां की सिक्योरिटी एजेंसियों की बैकिंग पे कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि कश्मीर के बाहर जो कश्मीरी तलबा हैं उनको अताब का निशाना बनाया जा सके।
इस बीच दिल्ली से 2 महीने बाद लौटने वाले अलगाववादी नेता सईद अली गिलानी ने कश्मीरियों से अपील की है कि यहां शिक्षा प्राप्ति के लिए आने वाले भारतीय विद्यार्थियों के साथ अतिथियों का सलूक करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतें यूनिवर्सिटियों में राजनीति करके विद्यार्थियों का कैरियर तबाह कर रही हैं। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
और अब बात भारत प्रशासित कश्मीर के उन छात्रों की जो भारत की राजधानी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। कश्मीर के ऐसे ही कुछ छात्रों को जब BBC से बात करने का मौका मिला तो वे अपने कड़वे अनुभव साझा करने से खुद को रोक नहीं पाए। सुनिए दिल्ली से जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
दिल्ली और दूसरे भारतीय शहरों में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र भेदभाव की शिकायत आमतौर से करते आए हैं, लेकिन जब अफजल गुरु की फांसी या JNU में कश्मीर की आज़ादी के नारे जैसे बड़े मुद्दे सामने आते हैं तो कश्मीरी छात्रों के अनुसार उनके खिलाफ भेदभाव बढ़ जाता है। कश्मीरी छात्र जब किराए पर घर लेने जाते हैं तो उन्हें कई बार मकान मालिक मना कर देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कभी कभी पुलिस भी उन्हें तंग करती क्योंकि वो कश्मीर से आए हैं। अपना नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर जामिया मिल्लिया में पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ने वाले एक कश्मीरी छात्र ने कहा कि लोग उनके बारे में यहाँ क्या सोचते हैं।
हम कश्मीरियों को दूसरी नज़र से देखा जाता है, हम कश्मीरियों को हम कश्मीरियों को आतंकवादी की नज़र से देखा जाता है यहाँ पे।
इस छात्र ने कहा कि कश्मीरियों को मुस्लिम इलाकों में ही घर लेना पड़ता है। वो ये भी स्वीकार करते हैं कि वो खुद भी मुस्लिम इलाकों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।
बिल्कुल, वो मुस्लिम एरिया में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको खुद को मतलब एक सेफ्टी जैसा फील होती है कि हम लोग मुस्लिम एरिया में है तो एटलीस्ट किसी ना किसी जगह हम लोग सेफ है।
दिल्ली के कश्मीरी छात्र ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान उनके परिवार वाले खास तौर से उन्हें फोन करके कहते हैं कि किसी से बहस करने की जरूरत नहीं और ये कि वो खामोशी से मैच देखें। वो T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक मैच को देखने गए थे और इसका हाल उन्होंने यूं बताया।
जब इंडिया ने जीता था तब वो नारेबाजी करने लगे, उन्हें प्रोटेस्ट निकाला वहाँ पे, उसके बाद वो मतलब पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने लगे, उसके साथ साथ कश्मीर को भी उन्होंने उस वक्त ये किया, इन्वॉल्व किया, कश्मीर मुर्दाबाद, वो गालियां निकालने लगे सभी स्टूडेंट से।
आप कितने कश्मीरी थे वहाँ जो साथ में मैच देख रहे?
बिल्कुल, वहाँ पे उस वक्त कश्मीरी सबसे ज्यादा।
और बाकी स्टूडेंट्स कितने थे?
बाकी रेस्ट ऑफ वो बाकी थे, मतलब 100-150 थे वो।
और उसके बाद कश्मीर मुर्दाबाद के भी नारे लगाने लगे?
वो बिल्कुल, पहले भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, और ये पाकिस्तान मुर्दाबाद, और कश्मीर को भी लास्ट में इन्वॉल्व किया, कश्मीर मुर्दाबाद।
आप लोगों ने भी जवाब दिया?
नो सर, हम बिल्कुल चुप रहे, हम वहाँ पे मेजॉरिटी थी क्योंकि मेरठ का मामला हमारी नजरों के सामने, मेरठ में क्या लड़कों के साथ कौन सा बर्ताव किया गया, आदमी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर वो तो हमारे दोस्त थे सर, हमारे ही भाई थे वो भी।
میں حال میں کشمیر سے لوٹا ہوں جہاں پاکستانی کرکٹ کو سمرتھن دینے والے مجھے زیادہ ملے۔ اگر آپ کشمیر کے اخباروں کے کھیل کے پنوں پر نگاہ ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ آپ پاکستانی اخبار پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ پنے پاکستانی کرکٹ کی خبروں سے بھرے پڑے رہتے ہیں۔ جامعہ ملیہ میں پترکاریتا کے چھاتر نے کہا کہ معاملہ جب پاکستان کرکٹ کا آتا ہے تو وہ بھاوک ہو جاتے ہیں۔
When it comes to Pakistan, our adrenaline level goes up. We don't know why, but یہ ہوتا ہے ہم لوگ کے ساتھ،
جوش میں آ جاتے
ہیں۔
ایسا کیوں ہوتا ہے
یہ ہمیں نہیں پتا ہے، جو پاکستان ان اے وے how it has dealt with Kashmir.
لیکن
the Kashmiris see Pakistan as their saviors.
وہ کہتے ہیں کہ جتنا وہ پاکستان کی ٹیم کی جیت پر خوش ہوتے ہیں اتنا ہی بھارت کی ہار پر، چاہے بھارت کسی دیش کے خلاف کھیل رہا ہو۔ ان کے انوسار اسی کارن انہیں دلی کے ان کے مسلم دوست بھی تانے کستے ہوئے کہتے ہیں کہ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے کئی ہندو دوست مصیبت کی گھڑی میں ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ زبیر احمد، بی بی سی، دلی۔
خبر سچ ہے
اگر بی بی سی پر ہے۔
कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है और इसके पीछे क्या सियासत है, लेकिन पहले जिक्र पाकिस्तान से आई खबर का। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है जिसमें एक दावा किया गया है। वो दावा ये कि पठानकोट हमले की जांच के सिलसिले में बीते दिनों जो संयुक्त जाँच दल भारत आया था उसे पठानकोट हमले के प्रत्यक्षदर्शी भारतीय जवानों से पूछताछ का मौका नहीं दिया गया। पाकिस्तान के इस बयान के क्या मायने हैं, इसे कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए, जानने के लिए हमने बात की सुशांत सरीन से, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और भारत पाकिस्तान के संबंधों पर पैनी नजर रखते हैं।
थोड़ा सा अजीब सी बात लग रही है क्योंकि उनके आने से पहले से ये अटकलें लग रही थी कि वो किससे मुलाकात करेंगे या किससे उनको मुलाकात की इजाजत दी जाएगी, और ये माना जा रहा था कि وہ کچھ ایسی ملاقاتیں چاہ رہے تھے یا کچھ ایسی رسائی چاہ رہے تھے جو شاید مناسب بھی نہیں تھی، اور جو کیس جس کے انویسٹیگیشن کے لیے وہ آ رہے تھے اس کے لیے ریلیونٹ بھی نہیں تھی۔ اور شاید یہی چیز یہ جن ادھیکاریوں سے ملنے کی بات کر رہے تھے اس پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جن جن لوگوں کا ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا اس کیس کے ساتھ، جیسے کہ وہ ایس پی صاحب یا وہ جو ایک جوہری تھا اور کچھ اور لوگ جو تھے، ان سب کی رسائی ہوئی، ان سب سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی۔ لیکن اب آپ یہ کہیں کہ اگر 200 وہاں پر سیکورٹی فورس کے پرسنل انوالو تھے کسی آپریشن میں، اور وہ چشمدید گواہ بھی تھے کیونکہ وہ وہاں پر لڑ رہے تھے، تو ان سب سے آپ اگر ملاقات کرنا چاہیں تو میرے خیال یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں مانا جا سکتا۔ تو ایک تھوڑا سا شک ضرور اٹھتا ہے کہ کیا یہ کوئی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کوئی اپنے لیے اسپیس چھوڑی جا رہی ہے کہ بعد میں ایک الیبائی مل جائے کہ جناب کیونکہ آپ نے ان لوگوں کے طرف ہمارے کو رسائی نہیں دی تو اس کر کے یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ آدھی ادھوری رہ گئی اور کیس گر گیا۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، کیسز میں ہو چکا ہے، تو یہ شک ضرور اٹھتا ہے۔ لیکن اس ایک نقطے کے علاوہ باقی جو بھی ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں کوئی ایسی آپتی جنک یا شک دلوانے والی بات تو مجھے نظر نہیں ہے۔
پاکستان نے کہا پٹھانکوٹ حملے کے گواہ سینا کے جوانوں سے پوچھ تاچھ کا موقع نہیں ملا۔ یہ تھے رکشا معاملوں کے جانکار سشانت سرین۔
سنسنی نہیں، وشوسنیتا کا دم،
بی بی سی ہندی۔
6:43 ہوئے ہیں، وقت ہو چلا ہے یہ جاننے کا کہ دلی سے چھپنے والے اخباروں کی سرخیاں آج کیا کچھ کہہ رہی ہیں۔ ہریتا کانڈپال بہت سارے اخبار لے کر اسٹوڈیو میں آ چکی ہیں۔
جی سندیپ، ابھی جس خبر کی آپ بات کر رہے تھے میں اسی سے شروعات کرتی ہوں۔ دی ٹائمز آف انڈیا نے چھاپا اس خبر کو، جے آئی ٹی ڈیڈنٹ گیٹ ٹو میٹ آل وٹنسز، पाकिस्तान ने कहा, सारे चश्मदीदों से नहीं बात कर पाए, इसी पर हमने बताया विस्तार से कि क्या क्या इसका अर्थ है। और दैनिक जागरण ने एक खबर छापी है पठानकोट हमले से जुड़ी, पठानकोट हमले की जांच में भारत ने मांगी अमेरिका की मदद, तो पाक को घेरने की तैयारी, ये हेडलाइन है। तो रिश्तों में पठानकोट बना दीवार, तो जो बर्फ पिघलती दिख रही थी और बातचीत का सिलसिला शुरू होने वाला था, कई तरह की बातचीत के लिए कार्यक्रम तय हुए थे, वो सब अब लगता है कि ठंडे बस्ते में फिर चला जाएगा, जिस तरह की खबरें आज हम देख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है एनआईटी श्रीनगर, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि ये भारत नहीं है, यहाँ पे जो विरोध कर रहे हैं छात्र उनका कहना है ये, और वो डरे हुए हैं, वो यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, ये यहाँ की हेडलाइन है। इसके अलावा भाजपा ने यहाँ पे चेतावनी दी है, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, JN के स्टूडेंट्स विल बी टारगेटेड आउटसाइड स्टेट, मतलब इस राज्य से बाहर जम्मू कश्मीर के छात्रों को टारगेट किया जाएगा अगर यही स्थिति बनी रही, ये भाजपा ने चेतावनी दी है। अच्छा। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। अब आगे बढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ में मेस में हुए झगड़े में कश्मीर के छात्र गिरफ्तार, जनसत्ता अखबार ने ये एक छोटी सी खबर छापी है पहले पन्ने पर। वहाँ कश्मीरी छात्रों को निलंबित कर दिया गया है, 9 छात्रों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा जनसत्ता की एक और खबर है, कोर्ट का निर्देश जांच में शामिल हो वीरभद्र सिंह, हिमाचल के मुख्यमंत्री के आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में CBI गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी गई है। इसके अलावा जनसत्ता ने एक और खबर प्रमुखता से छापी है, सम विषम योजना जो दिल्ली में लागू होने वाली 15 अप्रैल से, इस बार भी महिलाओं को इसमें छूट दी जाएगी। एक और अहम खबर जो सभी अखबारों में छाई हुई है, अमर उजाला ने इस पर लिखा है, सूखे पर आंखें नहीं मूंद सकता केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 राज्यों में पानी की कमी, बड़ी आबादी परेशान है और सरकार ध्यान नहीं दे रही, और IPL मैचों से ज़्यादा ज़रूरी है पीने के लिए पानी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बात कही है।
बहुत शुक्रिया। और अब क्या है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पीछे RSS की राजनीति? भारत में पिछले कुछ महीनों से, या कहें हाल के एक दो पखवाड़ों से, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लगातार बहस हो रही है, जो हाल के दिनों में और तेज़ हुई है। कहीं भारत माता की जय के नारे लगाने को राष्ट्रवाद बताया जा रहा है, तो कहीं इससे दूरी बनाने वालों को राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है। RSS का कहना है कि उसके लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी सुहेल हलीम ने लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल से बात की और जानना चाहा कि RSS के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या है।
देखिए, ऐसा है कि कल्चरल नेशनलिज्म एक फ्रेज है जिसका उपयोग पॉलिटिकल हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाले करते हैं, और उसकी तफसील में जाए बगैर भी ये कहा जा सकता है कि अगर आप कल्चरल नेशनलिज्म की भी बात करें तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन कल्चर क्या चीज़ है, और क्या हम किसी ऐसी इंडियन कल्चर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मिसाल के तौर पर मुसलमानों की या ईसाइयों की या यहूदियों की या पारसियों की कल्चरल देन का कोई नोटिस ना लिया जाए।
कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने भी भारत माता की जय का नारा लगाने का विरोध किया है, तो उनकी बात में क्या आपको कुछ वजन नजर आता है?
देखिए, जहाँ तक वो ये कहें कि किसी को मजबूर ना किया जाए, वहाँ तक तो मुझे वजन नजर आता है। वो ये कहें और फतवे के अंदाज में कहें, फतवे के तौर पर कहें कि ये नहीं बोलना चाहिए, उसमें मुझे कोई वजन नजर नहीं आता। तो ठीक है, शिर्क जो है वो इस्लाम में गुनाह अजीम है, लेकिन अगर इस बात को आप इसके लॉजिकल एंड तक ले जाएं तो हम और आप जानते हैं कि फिर आप बहावीज्म तक पहुँचते हैं, बहावी इस्लाम तक पहुँचते हैं, क्योंकि उस तरह से तो ये सारा जो पीरों का, फ़कीरों का, सूफियों का, औलिया, चिश्ती, ये सब सिर्फ हो जाएगा। भारत माता की जय कहने पर जो लोग बहुत एग्रेसिवली रिजिस्ट कर रहे हैं और जो बहुत एग्रेसिवली इंसिस्ट कर रहे हैं, वो दोनों कहीं ना कहीं नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऑपरेट कर रहे हैं।
लेकिन भारत माता की जय पर इस पूरी बहस से संघ क्या हासिल करना चाहता है, उनका मकसद क्या है?
संघ परिवार अपने किस्म की पॉलिटिक्स की हेगेमनी स्थापित करना चाहते हैं,
बालादस्ती एक तरह से।
हाँ, बालादस्ती। संघ परिवार अपने आप को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहता है, RSS, और सही कहता है, क्योंकि उसके लिए पॉलिटिक्स कल्चर का केवल एक हिस्सा है। वो एक ऐसी कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें उनका वर्ल्ड व्यू, जैसे वो हिंदू वर्ल्ड व्यू कहते हैं, जो कि है नहीं, हिंदू वर्ल्ड व्यू, हिंदू मजहब, हिंदू परंपरा और पॉलिटिकल हिंदुत्व में उतना ही फर्क है जितना के जमीन और आसमान में हो सकता है, जितना के सियाह और सफ़ेद में हो सकता है। वो उस हिंदू धर्म और परंपरा के नाम पर हिंदुत्व की पॉलिटिकल और कल्चरल हेगेमनी कायम करना चाहते हैं, और ये सब उसी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के हिस्से हैं।
تو کیا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے؟ کیا ہندوستان کی جے بولنا یا ہندوستان زندہ باد کہنا کافی نہیں ہو سکتا؟
بالکل کافی ہے. دیکھیے اسی لیے میں نے کہا کہ جو ریزسٹنس ہے وہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے اور جو بہت ایگریسو قسم کا انسسٹنس ہے وہ اور بھی زیادہ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے. میں یہ قطعی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ یا کوئی بھی نعرہ کسی کی بھی حب الوطنی کا یا پیٹریوٹزم کا کوئی ثبوت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے.
اس پوری بحث کا خطرہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا ہو سکتا ہے اس کا پرینام؟
پولرائزیشن, جو کہ ہندوستان جیسا ملک افورڈ نہیں کر سکتا. دیکھیے ہندوستان میں جن لوگوں کو ٹارگیٹ کر کے یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ کہنے کو مائنورٹی ہیں, ایک ٹیکنیکل سینس میں مائنورٹی ہیں. اگر ایبسلیوٹ سینس میں آپ ان کی تعداد دیکھیں تو وہ 25 کروڑ سے 30 کروڑ سے اوپر ہے. سوا ارب کی آبادی والے ملک میں آپ لگ بھگ 25 کروڑ ناگرکوں کو, شہریوں کو لگاتار متواتر ڈر کی حالت میں نہیں رکھ سکتے. لگاتار ڈرا ہوا شہری جمہوریت کے لیے بہت چنتا جنک استھتی ہے, اس کا مذہب کچھ بھی ہو. اس لیے یہ جو بحث جس طرح چلائی گئی ہے, جس طرح اس پر انسسٹ کیا گیا ہے, جس طرح کا ایگریسن ہے, کوئی کروڑوں کے سر کاٹ دینے کی بات کر رہا ہے, کوئی کچھ بات کر رہا ہے, یہ اس ملک میں پولرائزیشن اور ڈر کا ماحول پیدا کرنے کی استھتی بن رہی ہے اور یہ بہت خطرناک ہے.
پروشوتم اگروال کو آپ سن رہے تھے اور ان سے بات کر رہے تھے سہیل حلیم. اور اب بات اس کردار کی جو آپ کو بھی گدگداتا ہوگا, جسے آپ نے دور درشن پر دھاراواہک کے روپ میں دیکھا ہوگا, جو اب بڑے پردے پر فلم میں نظر آئے گا. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں جنگل بک کے موگلی کی. سنیے ممبئی سے شویتا پانڈے کی رپورٹ.
یہ گانا 90 کے دشک کے بچوں کی یادوں میں ایک خاص جگہ رکھتا ہے. ہر اتوار کا بے صبری سے انتظار رہتا تھا تاکہ جنگل بک دیکھ سکیں اور مل سکیں موگلی سے. اب وہ بچپن کے دن, وہ اتوار کا انتظار ختم ہونے کو ہے, کیونکہ ایک بار پھر جنگل بک اور موگلی سے ملاقات ہونے والی ہے, وہ بھی بڑے پردے پر.
اکیلے ہو یہاں اتنے گھنے جنگل میں, تم کیسے آئے؟
جان فیوریو کے نردیشن میں بنی اس ہالی ووڈ فلم کو بھارت میں امریکہ سے پہلے ریلیز کیا جا رہا ہے. اس کے لیے خاص انتظام بھی کیے گئے ہیں. بھارت میں یہ ہندی کے علاوہ تمل اور تیلگو بھاشا میں بھی ریلیز ہو رہی ہے. بھارتیہ درشکوں کے لیے خاص طور پر اسکرپٹ لکھوائی گئی ہے اور اس اسکرپٹ کو لکھنے والے میور پوری کہتے ہیں,
تو یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے اور بالکل نیا لکھا جائے وہ بھی نہیں. ٹرانسلیشن اور اڈیپٹیشن کے بیچ کا ایک چیز ہے یہ. ٹرانسکریشن مطلب کہ جو اوریجنل فلم ہے اس میں جو ڈائلاگز ہیں, اس میں جو کہانی ہے, مجھے اس کو وفادار رہتے ہوئے اس کو نبھاتے ہوئے صحیح, لیکن میرے آڈینس کے لیے یعنی ہمارے ہندی اسپیکنگ آڈینس کے لیے وہ کیسے بہت بہتر ہو سکتا ہے, کیسے ان کو اپنا لگے, ان کو پرائی چیز نہ لگے, ان کو اپنی لگے, کس طرح سے وہ بنایا جائے.
ویسے تو بھارتیہ درشکوں سے جنگل بک کا گہرا ناتا ہے. دراصل دا جنگل بک رڈیارڈ کپلنگ کی کتاب پر آدھارت ہے اور رڈیارڈ ممبئی میں جنمے تھے. جنگل بک کی کہانی کا مکھیہ پاتر موگلی کو بھی مدھیہ پردیش کے سیونی کا بتایا جاتا ہے. دنت کتھاؤں کی مانے تو رڈیارڈ جب مدھیہ پردیش گئے تو انہیں ایک ایسے بچے کی کہانی پتا چلی جسے جنگلی جانوروں نے پالا تھا. اب جب کہانی سے لے کر کردار تک بھارتیہ ہیں تو ان کرداروں کو ملی ہے مشہور بھارتیہ کلاکاروں کی آواز.
لگتا ہے یہی کہیں کوئی انسانی پلا ہے.
میرا بچہ ہے,
اسے بچانا چاہتے ہو؟
میں تم سب کو
کرداروں کے حساب سے ڈائلگ لکھے ہیں میور نے. اپنے ڈائلگ کے بارے میں میور کہتے ہیں,
سب سے زیادہ مزہ اگر آپ بولے تو سب سے زیادہ مزہ تو بلو کو لکھنے میں ہی مجھے آیا, کیونکہ بلو جو ہے وہ ایک بیر ہے, آلسی بھالو ہے, مطلب کہ انگریزی میں جسے سلوتھ بیر کہتے وہ کیریکٹر ہے. سلوتھ بیر جس کو ہندی میں ہم آلسی بھالو جسے کہتے, جو آلسی ریچھ جو ہوتا تھا ہمارے جنگلوں میں, وہ کیریکٹر ہے. اور میں نے اس کو پنجابی بنایا ہے تھوڑا, تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ مطلب جیسے ایک پنجابی پنا ہوتا ہے نا کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو مزے کی لائف جیو یار, تو وہ اس ٹائپ کا کیریکٹر ہے, تو اس کو لکھنے میں بہت مزہ آیا.
موگلی کی ماں رکشا کو اپنی آواز دینے والی ابھینیتری شفالی شاہ کہتی ہیں,
میں رکشا کا کردار نبھاتی ہوں جو اسے پالتی ہے, اسے یو نو اپنے بچوں کی طرح اپنی زندگی میں شامل کرتی ہے. یہ پہلی فلم تھی شاید جو ہماری اسکول ہم سب کو ساتھ میں دیکھنے لے گئی تھی.
جنگل بک کی ہی طرح اس کی ٹائٹل ٹریک کو لے کر بچوں میں دیوانگی ہوا کرتی تھی. تبھی تو ایک بار پھر 23 سال بعد گلزار اور وشال کی جوڑی نے جنگل جنگل بات چلیے کو کمپوز کیا اور پہلے کی ہی طرح इस बार भी ये गाना एक दिन में तैयार हो गया।
मोर गिलहरी हिरन सुनहरी उछल रहा है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है।
8 अप्रैल को रिलीज होने वाली ये फिल्म भारत में कितना मुनाफा कमा पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। श्वेता पांडे, बीबीसी मुंबई।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। सबसे पहले बात मलेशिया में जारी 25वें सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप की। अपने पहले मुकाबले में जापान को हराया भारत ने, 2-1 से जीत दर्ज की।
काफी अच्छा प्रदर्शन रहा इंडियन टीम का और इसी के साथ इंडियन टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप का अपना पहला आउटिंग जीत लिया है जापान टीम के विरुद्ध।
मैच के 18वें मिनट में जापान ने पेनल्टी कॉर्नर से पहला गोल करके बढ़त बनाई, लेकिन इसके बाद हाफ टाइम से पहले हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए भारत को मैच में बराबरी पर ला दिया। उसके बाद 36वें मिनट में कप्तान सरदार सिंह के शानदार रिवर्स फ्लिक के जरिए भारत ने मैच में 2-1 की बढ़त बना ली। पर भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी हरबिंदर सिंह का मानना है कि भारत का प्रदर्शन खास अच्छा नहीं था।
मेरे को लगता है कि थोड़ा ना ये उन्होंने कैजुअली लिया, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस लग रहे थे। अगर पहला अटैक देखने में 23 मिनट के बाद हमने उनके गोलकीपर को टेस्ट किया तो 23 मिनट तक जो हॉकी है मिडफील्ड होती रही, पोजेशन गेम ज्यादा रही। तो ऐसी टीमें जापान एक ऐसी टीम है जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया। उम्मीद है अब कोचेज जो है उन्होंने इसके ऊपर जरूर ध्यान दिया और उनको टीम के साथ डिस्कस करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच है उसमें ये जो गलतियां की हैं ना दोहराएं तो अच्छा है।
वही महिला हॉकी में हॉकर्स बे कप के पूल बी के अंतिम मैच में चीन ने भारत महिला हॉकी टीम को 1-2 से शिकस्त दी। अब तक पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। और क्रिकेट में आईपीएल 9 में इस बार एक रोमांचक बदलाव। जी हां, आईपीएल के 9वें सीजन में इस बार मैदान में मौजूद दर्शकों को भी थर्ड अंपायर को रेफर किए गए फैसले पर अपनी राय देने का मौका मिलेगा। कैमरे पर दर्शकों की राय को दिखाया जाएगा, लेकिन इस मामले में थर्ड अंपायर का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। इस साल आईपीएल 9 में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और ये टूर्नामेंट 9 अप्रैल से 29 मई तक खेला जाएगा। और बैडमिंटन में भारत की साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की, दूसरे दौर में जगह बनाई।
खेल समाचारों के बाद चलते चलते एक झलक उन खबरों की जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
श्रीनगर के एनआईटी में गैर कश्मीरी छात्रों पर जम्मू कश्मीर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में नेशनल पैंथर्स पार्टी और श्रीराम सेना की तरफ से आज जम्मू बंद का आह्वान किया गया है। सूखा प्रभावित महाराष्ट्र में जल संकट को देखते हुए आईपीएल के मुंबई, पुणे और नागपुर में होने वाले मैचों को कहीं और कराने पर बॉम्बे हाईकोर्ट के सवाल का जवाब बीसीसीआई आज देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 अन्य नेताओं को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के मानहानि के मामले में अदालत में आज पेश होना है। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या के बैंकों को कर्ज के 4,000 करोड़ रुपए लौटाने के प्रस्ताव पर बैंक अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल करेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड में राजनीतिक संकट से जुड़ी 6 याचिकाओं में स्पीकर के फैसले के खिलाफ बागी विधायकों की याचिका भी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर आज किया जाएगा।
और कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के विदेश मामलों के मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को हमले के चश्मदीद भारतीय सुरक्षा बलों के सदस्यों से नहीं मिलने दिया गया। श्रीनगर में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एनआईटी में गैर कश्मीरी छात्रों ने इंस्टीट्यूट को भारत प्रशासित कश्मीर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की और नेशनल पैंथर्स पार्टी और श्रीराम सेना ने आज जम्मू में बंद का ऐलान किया है। आइसलैंड के सत्तारूढ़ गठबंधन ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर सिगर्डर इंगी जोहानसन को चुना। इससे पहले पनामा पेपर लीक्स में नाम आने के बाद सिंगमंडर गुन लॉगसॉन ने कल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अफ्रीकी देश सूडान के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर ने 31 साल बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने की घोषणा की। उनका कार्यकाल 2020 में खत्म हो रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंटरनेट पर धार्मिक कट्टरता की निंदा करने वाले एक छात्र की हत्या कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि कानून की पढ़ाई कर रहे नजीमुद्दीन समद पर ढाका में एक चौराहे पर हमला किया गया। नजीमुद्दीन ने कथित तौर पर धर्मनिरपेक्ष प्रचार समूह का संचालन करते थे और अपने फेसबुक प्रोफाइल पर उन्होंने लिखा था कि मेरा कोई धर्म नहीं है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी मदद कर रहे थे शाकिर आलम। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।